होने वाले फेडरल चुनाव से पहले इस साल में पहली बार संसद फिर से शुरू हुई है। सरकार का प्रस्तावित धार्मिक भेदभाव विधेयक बहस के लिए आया है और संवेदनशील लोगों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में जो चिंताएं हैं, ये उस पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। वर्ष के लिए संसद का पहला सत्र कैनबरा में सेंट निकोलस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक चर्च सेवा के साथ शुरू हुआ। सेनेटर अमेंडा स्टॉकर ने आधिकारिक रूप से स्वागत किया।
So let us focus our eyes upon him and strive for the kind of diligence, thirst for truth, grace and forgiveness, and pray for every blessing upon this magnificent country.
ये तीसरी बार है जब सरकार का धार्मिक भेदभाव विधेयक संसद के सामने आया है और पूर्व चैंपियन तैराक और अब मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता इयन थॉर्प के अनुसार चैम्बर में यानी प्रतिनिधि सभा में इस बिल का अभी तक कोई अधिक समर्थक नहीं है। श्री थॉर्प चाहते हैं कि ये बिल हमेशा के लिए चला जाए क्योंकि ये राज्य द्वारा स्वीकृत भेदभाव बन जाता है।
What this is it becomes state-sanctioned discrimination. To gain rights for one group of people whilst excluding another group of people, for me, is discrimination. And with that, we should consider what this place that we're in, what it actually represents, and how it represents each and every one of us.
कानून के साथ चिंता का एक हिस्सा समलैंगिक और ट्रांसजेंडर छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी है। इस बिल से वर्तमान और पूर्व छात्र निराश हैं। एक समलैंगिक ईसाई महिला कैरन पैक का कहना है कि ये केवल उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में ही नहीं है जो चिंता का विषय है, बल्कि ये उन छात्रों और शिक्षकों के बारे में भी है जिन्हें इस बात से अब निपटना होगा कि कैसे ये बिल उनके लिंग भेद और विश्वास को एक दूसरे के सामने विरुद्ध खड़ा कर देता है। सुश्री पैक चाहती हैं कि सभी सुरक्षित रहें।
You know, there's talk this morning that, okay, so maybe we'll have protections so that gay students can't be expelled. That's fantastic, but what about all the trans kids? What about all the other kids that are still closeted because, like me, they hear the way that their faith communities and their religious communities speak about LGBTIQ people?
High school ke antim varsh mein ek transgender chhatra, Olivia Stewart ka apna anubhav इन चिंताओं का समर्थन करता प्रतीत होता है। ओलिविया का कहना है कि 13 साल की उम्र में उनके साथ सीधे तौर पर भेदभाव किया जा चुका है जब वो ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आई थीं। सुश्री स्टीवर्ट स्कूलों को बदलने के लिए मजबूर हो गई थीं, लेकिन उनका कहना है कि इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ।
Even at the next school, the school failed to protect me and other trans students at the school sufficiently. And we were bullied and maligned by other students. Due to not fostering an accepting culture in the school, this bullying was able to take place with the school unable to do much about it.
बिल के आलोचकों का ये भी कहना है कि जो लोग विकलांगता को पाप के सबूत के रूप में देखते हैं, वो विकलांग लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। एक वकील और विकलांगता अधिवक्ता सैम ड्रमंड का कहना है कि चाहे वो स्वयं नहीं चाहते रहे, लेकिन ईसाइयों ने अक्सर उनके लिए प्रार्थना करने की पेशकश की।
What I don't want to happen, but what this bill might allow to happen, is for me to be in a workplace and for someone to tell me not only that their prayers are with me, but that I'm being punished somehow by the devil.
यहाँ तक कि संगठित धर्म के लोग भी कानून का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुरेंद्र जैन ऑस्ट्रेलिया की हिंदू परिषद से हैं और उनका कहना है कि बिल अल्पसंख्यक धर्मों विशेषकर हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
Our first concern is jobs. Hindus work in faith-based schools, in hospitals, and a large number work in aged care facilities. After this bill is passed, they will lose their employment opportunities.
ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ सोशल सर्विसेज की सीईओ कैसेंड्रा गोल्डी का मानना है कि ये प्रस्तावित बिल पहले से ही खंडित ऑस्ट्रेलिया को विभाजित कर देगा। वो कहती हैं कि संसद के पास अब एक महत्वपूर्ण स्टैंड लेने का अवसर है।
This is a moment for us all to say what we value as a country. What we value is inclusion. What we value is everybody. What we value is care in the community. And what we value is equality and human rights. We want discrimination to be stopped in its tracks.
धार्मिक भेदभाव बिल सरकार के लिए चुनाव पूर्ण एजेंडे का एक प्रमुख घटक बन रहा है। तो स्कॉट मॉरिसन के पास अब इस कानून को बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी के उदारवादी और रूढ़िवादी तत्वों के साथ सौदा करने का ही रास्ता बच गया है। कुछ गठबंधन सदस्यों के लिए ये बिल काफी दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन दूसरों के लिए ये मामला दूर तक जाएगा। तस्मैनियन लिबरल सांसद ब्रिजेट आर्चर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो इस समझौते का समर्थन नहीं करती हैं कि समलैंगिक छात्रों को तो निष्कासित होने से बचाया जाएगा, लेकिन ट्रांसजेंडर छात्र ऐसा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मंगलवार रात संसद में बहस के दौरान इसके खिलाफ बात की।
In 2022, I can't believe we're even having this conversation. As an elected representative, my job is to come here and vote on legislation that I believe will best serve my community. This bill is an overreach, and I cannot use the role that I have here to endorse a bill that erodes the rights of so many in my community that they already enjoy.
अब से लेकर संभावित मई चुनावों के बीच केवल 10 दिन की सिटिंग बची है। यदि कानून पारित हो जाता है तो ये रूढ़िवादी ईसाई मतदाताओं के बीच सरकार के समर्थन को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके प्रावधानों और प्रभाव से निराश लोगों को और प्रेरित होने की भी संभावना है, और ऐसे में सरकार का खाली प्रार्थनाओं से तो काम नहीं चल पाएगा। SBS न्यूज के लिए शुभा कृष्णन और देव गौरके की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।